ये आकाशवाणी है। अब आप अतहर सईद से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में एआई शिखर सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के परिवर्तनकारी प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए इसे वर्तमान सदी में मानवता के लिए कोड लिखने वाली एक निर्णायक शक्ति बताया है। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रां के साथ शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि एआई किसी भी पिछली महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धि के विपरीत है, जिसके लिए शासन के लिए वैश्विक दायित्वपूर्ण और समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और कृषि में क्रांति लाकर सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को तेज और अधिक प्रभावी बनाकर लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एआई की क्षमता को रेखांकित किया। उन्होंने प्रौद्योगिकी को लोकतांत्रिक बनाने, जन केंद्रित अनुप्रयोग बनाने और विशेष रूप से ग्लोबल साउथ में सभी को यांत्रिक मेधा के लाभ सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया।
आई वेलकम द डिसीजन टू सेट अप द एआई फाउंडेशन एट द काउंसिल फॉर सस्टेनेबल एआई। इट शुड बी मोर इंक्लूसिव ऑफ द ग्लोबल साउथ एंड इट्स प्रायोरिटीज, कंसर्न्स एंड नीड्स।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत 10वें स्थान से बढ़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रधानमंत्री ने आज भारत ऊर्जा सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश की गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता 3 गुना बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत पेरिस समझौतों के लक्ष्यों को पूरा करने वाला पहला G20 देश है। राज्यसभा और लोकसभा में आज आम बजट 2025-26 पर फिर से चर्चा की शुरुआत हुई। भारतीय जनता पार्टी के भागवत कराड़ ने कहा कि सरकार द्वारा किए गए उपायों के कारण राजकोषीय घाटा 0.4% तक कम हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण लीकेज को रोकने में सहायक साबित हुआ है। इस चर्चा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आने वाले वर्षों में देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। कांग्रेस के चंद्रकांत हंडोरे ने कहा कि देश में 70% लोगों के लिए लाई गई कल्याणकारी योजनाएं जमीनी स्तर पर पूरी तरह लागू नहीं हो पा रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन ने 12 लाख रुपये तक की आय पर कर छूट दिए जाने के फैसले का स्वागत किया है। लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि बजट में वृद्धि और समावेशी विकास पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट में गरीब महिलाओं और युवाओं के विकास पर जोर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कृषकों के कल्याण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि बेरोजगारी की दर में कमी आई है और हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। इससे पहले चर्चा में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर लोगों को नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने विकसित भारत विजन और किसानों की आय दोगुनी करने संबंधी कोई भी रूपरेखा नहीं होने का आरोप सरकार पर लगाया। इस चर्चा में भारतीय जनता पार्टी की हेमा मालिनी ने कहा कि देश महिलाओं और किसानों पर विशेष ध्यान देकर तीव्र विकास कर रहा है। चर्चा जारी है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जतिन प्रसाद ने कहा है कि देश में अब तक 90% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI स्वचालित माध्यम से प्राप्त हुआ है। श्री प्रसाद ने यह जानकारी आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और आसानी से समझने योग्य व्यवस्था मौजूद है। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 में महिलाओं के कल्याण के लिए 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बजट का रिकॉर्ड आवंटन किया गया है। यह आवंटन पिछले वर्ष से 37% अधिक है। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला उद्यमी देश की आर्थिक प्रगति की प्रेरक शक्ति है। दिल्ली ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भारत के मुकुंद शशि कुमार दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। आज उन्होंने पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में फ्रांस के साशा गुएमार्ड वेनबर्ग को हराया। अगले दौर में कल उनका सामना बेल्जियम के माइकल गिट्स से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।